जैसे ही सबने एक साथ ये कहा, दादाजी मुस्कुराकर बोले, मेरे बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम सब मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दोगे, तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आगे चारों खामोशी से चुप खड़े हो गए। आस्था अपना नाश्ता खत्म करके खड़ी हो गई। तभी दादाजी बोले, हमने तय किया है कि आज हम सब कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि आस्था बेटी को वहां पूजा करनी है। दादाजी के ये कहते ही पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरमान गुस्से से आस्था की ओर घूरने लगा। उसे यकीन था कि आस्था ने ही दादाजी को मंदिर जाने की बात बताई होगी। अरमान बोला, लेकिन दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ कर्म में यकीन रखता हूँ। अरमान के ये कहते ही आस्था मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, हमें तो लगा था कि ये आदमी अहंकारी, बदतमीज और खड़ूस है, लेकिन ये तो कितना बड़ा नास्तिक है। कैसे हमारे कान्हा जी के बारे में बात कर रहा है? मन तो कर रहा है कि अभी इसके पीछे रामू का बेल छोड़ दें, इसे छठी का दूध याद दिला दें। ध्रुव कन्फ्यूजन में बोला, लेकिन दादाजी, अचानक से आपको क्यों मंदिर जाना है? दादाजी बोले, वो आस्था बहू का जाने का मन है, इसीलिए हमने उसे कहा कि हम सब भी आज उसके साथ मंदिर जाएंगे और इसी बहाने तुम सबके पाप भी थोड़े कम हो जाएं। दादाजी के ये कहते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब सुमित मुन बनाकर बोला, लेकिन दादाजी, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया। बेचारे समूह बनाकर सुमित के ये बोलते ही सभी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे कोई जोक सुन लिया हो। आहान इस बहस में कूदते हुए बोला, तो क्या आपको लगता है सुमित भैया से ज्यादा मैंने कोई पाप किया है? मैं तो आपसे भी ज्यादा मासूम हूँ। आकाश बोला, अरे भाई, मैंने भी कभी कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ तक कभी एक मच्छर तक नहीं मारा है। आकाश के ये कहते ही ध्रुव को एक फ्लैशबैक याद आया। आकाश ने कैसे एक आदमी का सिर पकड़कर, उसकी गर्दन से पकड़कर कितनी बुरी तरह से दीवार पर मारा था, जब तक उस आदमी ने दम नहीं तोड़ दिया था। फिर आकाश की ओर घूरते हुए ध्रुव सोचने लगा, देखो, यहाँ खड़ा होकर कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है कि इसने एक मच्छर भी नहीं मारा है। ध्रुव के चेहरे के भाव देखकर आकाश समझ गया कि ध्रुव क्या सोच रहा है। वो जल्दी से ध्रुव से नजरें चुराने लगा। तभी दादाजी बोले, तुम सब अपनी फालतू की बातें बंद करो, मैंने कह दिया ना कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। फटाफट से तैयार हो जाओ और आस्था बेटी, आप भी फटाफट से तैयार हो जाओ और मंदिर चलो, और हाँ, उसके बाद हम आपको शॉपिंग पर भी ले जाएंगे। दादाजी के ये कहते ही कि आस्था को मंदिर और शॉपिंग पर ले जाना है, अरमान गुस्से से भर उठा और दांत पीसते हुए बोला, दादाजी, आप इस लड़के की शॉपिंग के लिए मेरा करोड़ों का नुकसान करना चाहते हैं। एक काम कीजिए, ये कार्ड लीजिए, अब ये जितना मर्जी उतना शॉपिंग कर सकती है, और वैसे भी इन जैसी लड़कियों को पैसों के अलावा और चाहिए क्या? अरमान के ये कहते ही सभी एक पल के लिए सन रह गए। इसी बीच आस्था की सिसकियां उन सबके कानों में सुनाई दी। आस्था अरमान की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ज्यादा टूट गई। वो सबके सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए आस्था रोते हुए तुरंत सीढ़ी से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। आस्था को इस तरह रोता देखकर दादाजी भड़क कर बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या जरूरत थी बहू के बारे में इस तरह की बातें बोलने की? कहने को तो तू अपने आप को इतना होशियार और चालाक समझता है, तुझे क्या इंसान की शक्ल सूरत देखकर तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लड़की ऐसी नहीं है, वो तो बहुत साफ दिल की मासूम लड़की है। दादाजी गुस्से से अरमान को डांटने लगे, खबरदार, आज के बाद अगर तेरी वजह से उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों को भी आस्था के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन डेविल किंग के सामने उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे उसे कुछ कह सके। ध्रुव दादाजी का गुस्सा कम करने के लिए बोला, दादाजी, हम सब मंदिर जाएंगे, अगर आस्था भाभी चाहती है तो हम उन्हें मंदिर लेकर जरूर जाएंगे। ये कहकर वो चारों अलग अलग कमरों में तैयार होने के लिए चले गए, क्योंकि वे सब अपने बिजनेस सूट में थे। अरमान दादाजी से फिर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी गुस्से से अरमान को देखकर बोले, सोच ले अरमान, अगर तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। दादाजी के ये कहते ही अरमान गुस्से से अपने माथे पर टैप करने लगा और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो सोचने लगा कि ये दो कौड़ी की लड़की ने किस तरह से इस घर में आते ही सबको अपने इशारों पर नाचना शुरू कर दिया है। फिर वो गुस्से से जाकर बिना कुछ बोले इमोशनलेस चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गया। उसके इस तरह बैठने के अंदाज से दादाजी मुस्कुराते हुए सोचने लगे, बेटा, मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे कैसे कंट्रोल करना है। ये सोचते हुए दादाजी भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले गए। आस्था उस वक्त काफी रो रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बारे में उसका खड़ूस पति ऐसी सोच रखता होगा। उसने सोचा था कि वो उससे गुस्सा होगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रियंका की जगह उसकी शादी उससे हो गई थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अरमान उसके साथ सबके सामने इस तरह का बर्ताव करेगा। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा वो हैरान हो गई। दरवाजे पर आहान खड़ा था और समझाने के लिए बोला, भाभी, प्लीज आप बिल्कुल मत रोइए, मैं जानता हूँ कि भाई की बात इस वक्त आपको बहुत बुरी लगी है, लेकिन मेरा यकीन करें भाभी, मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे आप उन्हें समझेंगी तब आपको भी उनकी अच्छाई पर भरोसा हो जाएगा। आहान की बात सुनकर आस्था का दिल तो कर रहा था कि अरमान को इतनी गालियां दे कि उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए वो बोली, आहान जी आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आहान सर पर हाथ रखते हुए बोला, ओहो भाभी मैं तो भूल ही गया, वो दादाजी आपको बुला रहे हैं, मंदिर जाने के लिए हम सब गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। आहान के ये कहते ही आस्था के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने तो सोचा था कि उसके खड़ूस पति ने मंदिर जाने से मना कर दिया है तो शायद कोई भी मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन अब आहान की बात सुनने के बाद उसे एक और उम्मीद दिखी। उसे लगने लगा कि उसके साथ इतना सारा गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने अब तक कान्हा जी से जितने भी वादे किए थे वे पूरे नहीं किए हैं। ये सोचते हुए आस्था जल्दी ही जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो बाहर आई दो गाड़ियों में आकाश और सुमित और दो गाड़ी में ध्रुव और आहान दिखाई दिए। एक गाड़ी में दादाजी बैठे थे और एक गाड़ी में अरमान सिंघानिया। अब आस्था की हालत खराब होने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे और वो किस गाड़ी में बैठे। बाकी की गाड़ियों में कई गार्ड्स भरे हुए थे। आस्था सोचने लगी कि ये लोग मंदिर जा रहे हैं या कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं। इतने सारे आदमियों को लेकर मंदिर कौन जाता होगा? मंदिर में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? लेकिन आस्था ये बात मन में ही बोल सकी, उनके मुंह पर बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। आस्था ने ज्यादा ना सोचते हुए दादाजी की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। अरमान ने आस्था की ओर एक नजर भी नहीं देखी क्योंकि आस्था का इस तरह से उसे इग्नोर करके दादाजी के साथ बैठना उसे अंदर तक चुप गया था, लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हो गया।